روحانی معیار کا تعین ہوتا ہے اس پہ, یا اس کا امتحان جو ہوتا ہے اس سے وہ اوپر نیچے ہوتا ہے. تو امین لائک مومنین جس طرح ہم ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک امتحان ہے یا آزمائش ہے, تو اس میں آپ دیکھیں کہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں زندگی میں, تو کہاں پہ یہ ریئلائز ہوتا ہے یا جب ہو جائے تو پھر اس کے لیے آپ تیار رہیں گے یا آزمائشیں تو آتی رہیں گی؟
جی بالکل.
تو اس کا وہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا یہ وہی ہے جو مجھے قرب خدا کی طرف لے کے جا رہی ہے یا میں اس سے بھول جا رہا ہوں؟
یہ تو خیال انسان کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے, یعنی ہر مرحلے سے گزرنے کے بعد انسان کو خود یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میں آگے بڑھاؤں یا پیچھے ہٹاؤں. کیا خیال ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے؟ یعنی انسان کو خود یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا اس کے لیے. اور اس کا حقیقتاً جو کوئی معیار ہے نا وہ کسی اور کے پاس ہے بھی نہیں. یعنی میں اس چیز کو کہ زیادہ اچھا نہیں سمجھتا کہ ہم لیکن آپ اگر اس کو دیکھیں نا تھرو آؤٹ دا ہسٹری, یعنی کہ میں اس بات کو تھوڑا سا اس لیے ڈسکریج کرتا ہوں یا نہیں جانا چاہتا ہے کہ عام طور سے پہ لوگوں کی ٹینڈنسی ہوتی ہے, اور خاص طور سے آج کل یوٹیوب اور انٹرنیٹ کے دور میں, کہ وہ یہ سب جو ہے نا وہ ایک وہ ہے شاخ در شاخ ہے, کہ وہ چڑیا ایک شاخ پہ بیٹھ گئی نا تو پتہ نہیں کہاں چلی جائے وہاں سے. تو اس لیے میں زیادہ نام لینا اور وہ کرنا پسند نہیں کرتا کہ آپ لوگ اصل بات سے ہٹ کے کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں. ورنہ اس قسم کے افراد دنیا کے تقریباً ہر جگہ اور مذاہب اور اس میں موجود ہیں, ان کے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جنہیں آپ شہید یا شہداء کے عنوان سے کہہ سکتے ہیں, اور جنہوں نے جو حق سمجھتے تھے اس کے لیے غیر معمولی تکلیفیں اٹھائی ہیں, اور جنہوں نے اس نظریے کو بڑے واضح طور سے اپنی زندگی میں پیش کیا ہے. کہ ایک طرف تو یہ نا جو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ لائف میں جو سفرنگ ہے یا تکلیف ہے وہ مطلب ایک لحاظ سے خدا کی زیادتی ہے, وہ خدا جو بینیولنٹ ہے, وہ خدا جس کے لیے آپ رحمان و رحیم کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں وہ کیسے انسانوں کو اتنی تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے. لیکن جو دوسرا چیز, اگر آپ نے وہ پڑھی ہو بک یا وہ تقریریں سنی ہو جو میں نے ایک ہی کی فرمائش کی تھی کہ وہ ضرور سن لیں اور کچھ نہ سنیں, تو امتحان الہی والی جو سیریز ہے, کیونکہ اس سے یہ زندگی کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہم سب کے لیے اور کافی حد تک انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سالو ہو سکتا ہے. تو یعنی کہ اگر آپ اس قسم کے افراد سے جب بھی بات کریں گے نا یا ان کی چیز سنیں گے تو وہ ہمیشہ اس بات کو کہیں گے یہی کہ زندگی جو ہے وہ خدا نے آزمائش کے لیے ہی بنائی ہے تاکہ ہمارے درجات بلند ہوں. ٹھیک ہے, یہ دوسرا نظریہ ہے اس بات کو, اور یہ نظریہ خالی مسلمانوں میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ خالی میں آپ کو بالکل اطمینان سے یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ خالی مسلمانوں میں نہیں ہے. انہیں میں نام لیے بغیر آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نام نام لیے بغیر میں وہی کہ کیونکہ پھر وہ ہوتا ہے نا دماغ پھر کہیں سے کہیں نہ نکل جائے. ایک شخص جو یعنی کرسچنز کے لیے جیسے ہمارے لیے اپنی ہسٹری میں امام خمینی ہے نا, یعنی کہ ایک ایسا رول ماڈل ہے کہ ایسا رول ماڈل آپ کے پاس ہے ہی نہیں آئمہ یا انبیاء سے ہٹ کر, یعنی کہ وہ رول ماڈل کے جس نے یہ بات کہی ہو کہ بھائی دین جو ہے وہ دین اگر آپ اس کو اپنی ٹرو اسپرٹ میں نافذ کرنا چاہتے ہیں, یعنی وہ اسپرٹ جو قرآن نے دی ہے, وہ اسپرٹ جو معصومین علیہ السلام نے دی ہے, تو اس اسپرٹ کا مطلب یہ ہے اپنا تہذیب و تزکیہ نفس, اس اسپرٹ کا مطلب ہے ظلم کے خلاف قیام, اس اسپرٹ کا مطلب ہے انسانوں کو حق کی طرف دعوت دینا مضبوطی کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس اسپرٹ کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ کی کبھی حمایت نہیں کرنا اور سچ کی حمایت میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنا. ٹھیک ہے, یہ جو ہم امام حسین علیہ السلام کے نام کے ساتھ یہ باتیں کرتے ہیں لیکن اس اسپرٹ کو پریکٹیکل کرنا, اسی طریقے سے کرسچنز کے پاس بھی ایک رول ماڈل ہے اسی نوعیت کا. یعنی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو 39 ایئرس کی ایج میں ہی واز ایگزیکیوٹیڈ بائی ہٹلر, ہی واز اے جرمن, जर्मन शख्स था और 1939 में वो अमेरिका चला गया था, मतलब वो वही था, कोई पादरी वगैरह था, लेकिन बहुत यंग 39 इयर्स की एज में तो मरी गया वो, मतलब मार दिया गया। 1939 में जब वो अमेरिका में था तो उसके सारे दोस्तों ने, उस वक्त ये वर्ल्ड वॉर शुरू होने का सारा हिसाब किताब बन गया था, और वो जैसे कहते हैं ना शिप्स ही थे उस जमाने में, एयरप्लेन तो ऐसे नहीं थे। तो उसने एक जुमला कहा है वहाँ अमरीका में अपने दोस्तों से, और उसने कहा कि मैं अगर तकलीफ में अपनी कौम के साथ खड़ा नहीं हो सकता तो आसानी और नरमी के दिनों में मुझे उन्हें तबलीग करने का कोई हक नहीं पहुंचता। इससे आप अंदाजा करें उस शख्स के मेयार का, कि अगर मैं तकलीफ और मुसीबत में अपनी कौम को छोड़ के इधर बैठ जाऊं, यूएसए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बहुत देर तक अलग रहा है, और पर्ल हार्बर के बाद यूएसए मजबूर हुआ है, यूएसए नहीं था बिल्कुल, यूरोप में थी ये सारी जंग, तो उसके सारे दोस्तों ने कहा रुक जाओ बहुत ख़राब हालात हैं, बहुत मुसीबत है, परेशानी है। तो उसने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। और उसने बाकायदा, वो और उनके साथ कुछ लोग थे जिसमें उसका भाई, उसके बहनोई, जिन्होंने हिटलर के खिलाफ क़याम किया है और उस हुकूमत को हटाने की पूरी कोशिश की है, दो मरतबा हिटलर पे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए हैं, और उनकी वजह क्या थी कि ये वो शख्स है कि जिसने दीन की बुनियादों को हिला दिया है, उनके नज़दीक जो था कि ये सेकुलरिज्म और ये सब चीज़ें, ये दीन को रिप्लेस करने की पूरी एफर्ट है खुदा के निज़ाम को। तो और उसकी एक बहुत अच्छी किताब है, उसमें उसने ये बात कही थी कि जो लोग दीन और मज़हब को कबूल करते हैं उनमें एक सस्ते किस्म के अफराद हैं, एक कीमती अफराद हैं। सस्ते किस्म के अफराद वो होते हैं जो मगफरत बांट रहे होते हैं बगैर तौबा के, ये सस्ता दीन है, अब से आप अंदाजा करें। लेकिन असल जो दीन है कि जो कीमत है, कि मैं अगर खुदा को मानता हूं, मैं अगर ईसा मसीह को मानता हूं, तो उसकी कीमत है, और वो कीमत क्या है, अब वही जो फ्रीडम वाली बात में जो जिस तरफ आ, कि उसने ये बात कही कि असल आजादी जो है ना वो मौत है, क्योंकि जब तुम अपनी जिंदगी खुदा की खातिर गुजारते हो और इस हालत में तुम्हें मौत आ जाती है तो तुम खुदा में अपनी फ्रीडम को हासिल करते हो। तुम खुदा में आजाद हो जाते हो, यानी तुम्हारी तुम्हें अपनी फ्रीडम कहाँ मिलती है, तुम हर पाबंदी से, हर बुराई से, हर खराबी से, हर चीज से आजाद हो जाते। तो ये वो नजरियात हैं जिसको मैंने आपको सिर्फ इसलिए समझाया कि ये हमारे यहाँ भी उलमा और उरफा ने इस किस्म की बातें की हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास जो इस वक्त बेहतरीन, हम खुशकिस्मत दौर में रह रहे हैं कि जो इमाम खुमैनी ने जिस तरीके से और दीगर उरफा जो थे उन्होंने ये बातें की। तो ये तमाम मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, हर जगह ही है कि जिस जिस मजहब के भी अक्लमंद अफराद हैं, समझदार अफराद हैं, उन्हें ये बात अच्छे तरीके से पता है कि ये जिंदगी महज आजमाइश है, इस जिंदगी की आजमाइशात में सफरिंग्स भी हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा सेटअप खुदा ने डेलिबरेटली बनाया है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप स्कूल में बनाकर स्कूल में टेस्ट रखते हैं, एग्ज़ाम रखते हैं, बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के मराहिल से गुजारते हैं, उनको एक लिहाज से टेंशन में रखते हैं। अगर कोई सही स्कूल है, अच्छा है स्कूल है, तो वो बच्चों को सुकून से नहीं बैठने देता, उनको परेशानी में रखता है, यानी कि अगर बच्चे नॉर्मल किस्म के बच्चे हैं, नालायक बच्चे हैं, तो वो नाराज़ हो जाते हैं, ये क्या मुसीबत लगी हुई है हर वक्त की। लेकिन जो लायक हैं वो इस बात को समझते हैं कि ये सब का सब किस लिए, ताकि मैं अपनी एटर्नल या रियल लाइफ में एक बुजुर्ग शख्सियत बन के दाखिल हो सकूं। तो ये मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है कि ये वो कंसेप्ट है कि जो हर अकलमंद इंसान, हर साहिब समझ और साहिब फहम जो है वो इस नतीजे तक पहुंच रहा होता है। और मैंने आपको दो मिसालें इसलिए दी कि ये सिर्फ मुसलमानों की हद तक नहीं है, ये दीगर सबको बात समझ में आ रही है। यानी कि जो भी दयानतदार है, जो भी साहिब फहम है, जो हवस परस नहीं है, जो शहवत परस नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इंसानों के लिए अपनी हवस और शहवत की अहमियत सबसे ज़्यादा है। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुमला है कि लोग अन्नास व अबीदुद्दुनिया, अबीद कहते हैं ग़ुलाम को, लोग दुनिया के ग़ुलाम हैं और दीन उनकी ज़बान पर क्या है, जैसे लॉलीपॉप होता है, जैसे टॉफ़ी होती है, कि उसको वो चूसते रहते हैं, मज़े लेते रहते हैं उससे। और जहाँ आजमाइश का वक्त आता है तो सच्चे दीनदार बहुत थोड़े से रह जाते हैं। तो बात आपको वाजे हो रही है? तो यानी कि ये पूरी जिंदगी पैदाइश से लेके, यानी बुलूगत से लेके और इंतकाल तक आजमाइश, कुल्लन आजमाइश है। यानी ऐसा नहीं है कि इसमें आप कहें कि कुछ आजमाइश है और कुछ आजमाइश नहीं है, कुल्लन आजमाइश है, हर लहजा हर लम्हा। और उसको भी इन्हें कि जैसे कई दोस्तों से इन्हें कि बात करने में ये भी मैंने कहा कि हाँ ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट इस दुनिया में, तो उन्हें कहा आप भी तो आपने कहा था कि सब आजमाइश है, फिर ये रिवॉर्ड पनिशमेंट कहाँ से आ गई? तो उसका मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये लोकलाइज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट होते हैं, लेकिन वो जो लोकलाइज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है वो खुद एक आजमाइश है। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर कि अगर मुझे खुदा ने एक डिग्री दे दी, पीएचडी दे दी, कुछ दे दिया, एक लिहाज से ये लोकलाइज रिवॉर्ड है, यानी खुदा कहे के नाम आती है, लेकिन बजात खुद आजमाइश है। और वो आजमाइश क्या है कि ये जो मुझे खुदा ने अता किया है मैं इसका क्या करता हूं अपनी जिंदगी में। आपको मैं किसी को खुदा ने दौलत दे दी, एक लोकलाइज्ड रिवॉर्ड है एक छोटे से दायरे में, लेकिन हकीकतन आजमाइश है कि आप उस दौलत का क्या करते हैं। इसी तरीके से अगर खुदा ने किसी को रिस्क में महदूद कर दिया, कम कर दिया, लोकलाइज तकलीफ है लेकिन आजमाइश है कि आप उस सख्ती के अंदर कितनी कैरेक्टर का मुजाहरा करते हैं, कितनी खुददारी और सब्र है आप में। ठीक है, हर चीज आजमाइश अज अव्वल ता आखिर, कि जब तक इंसान इस दुनिया से निकल नहीं जाता, इस दुनिया से रुखसत नहीं हो जाता, उस वक्त तक हर चीज आजमाइश। अगरचे के बज़ाहिर एक महदूद हद के अंदर आपको लगता है कि यहां पर इनाम या पनिशमेंट मिल रही है, लेकिन वो बजात खुद इम्तिहान होती है। इस बात को समझना है हमें, यानी इम्तिहान की, और उसमें यह कि इंसान खुद कितना ऊपर जा रहा है कितने नीचे जा रहा है, डेफिनेटली वो उसके अपने अंदर की बात है। और जैसे वो उस शख्स की मैं आपको बात बताऊं कि उसने एक पोइम लिखी थी 1943 में, उसको कैद कर लिया था गेस्टापो ने, पकड़ लिया था, और मतलब उसके बारे में जितने भी कैदी थे और वो सब थे, वो सब बताते हैं कि वो मतलब ऐसा इंसान था कि बॉम्बिंग हो रही होती थी, क्योंकि 1944 वगैरह के बाद से फिर जर्मनी हारना शुरू हो गया था, तो अलाइड फोर्सेस की बॉम्बिंग हो रही होती थी, तो जो कैदी सेल्स में बंद थे वो पागलों की तरह चीख रहे होते थे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता था कि बॉम्ब आगे गिरा कहाँ जाएंगे, वह छोटे से उसमें बंद है। लेकिन उस शख्स का सुकून जो था ना वो काबिले दीद था, और उसका रवैया वहाँ पर ऐसा था कि जो गार्ड्स थे वो इस बात पर आमादा हो गए थे कि उसके लेटर्स और पोइम्स को बाकायदा वहाँ से बाहर पहुँचाते थे। उसकी एक बुक वो भी है कि जो उसने लिखी है कैद खाने में, तो उस कैद खाने के अंदर एक पोइम है उसकी, हु एम आई, मैं कौन हूँ, कि लोग कहते हैं कि मैं वो हूँ कि जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो मैं इतना पुरसकून होता हूँ, और लोग ये कह रहे होते हैं कि जब ये गार्ड्स और ये सब होते हैं तो मैं उनके सामने इतना पुरवकार होता हूँ कि गोया मैं उनका बॉस हूँ, और कहेंगे लेकिन मैं खुद जब अपने आप को देखता हूँ तो मैं खुद एक लरजती हुई शमा की मानिंद हूँ कि मैं किसी की तलाश में हूँ, मैं उस परिंदे की मानिंद हूँ जो अपने घोंसले से बहुत दूर है, जो अपने दोस्तों को तलाश कर रही है। फिर आखिरी उसका जुमला ये है कि मैं जो कुछ भी हूँ लेकिन ऐ मेरे खुदा मैं तेरा हूं। तो یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جیسے قرآن کریم نے بھی بعض اہل کتاب کے مومنین کی بہت تعریف کی ہے، سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ میں، کہ اہل کتاب کے مومنین کی، یہ مشرکین کی نہیں، مومنین کی. تو جیسے بھی میں نے کہا کہ ہم ابھی اس دور میں جو دیکھ رہے ہیں کہ عرفا اور امام خمینی وغیرہ کا، یا جیسے اس طریقے کے افراد جو تاریخ میں موجود ہیں، دیگر اس میں بھی موجود ہیں، تو اس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لائف جو ہے فقط اور فقط ایک آزمائش ہے، فقط اور فقط ایک آزمائش ہے. اور اس میں، یعنی کہ اب آخری بات، پھر میں اپنے ٹاپک پہ آ جاؤں، کہ آخری بات کیا ہے کہ اگر آپ آزمائشات اور مشکلات کے درمیان پرسکون ہیں، اگر زندگی کی مشکلات اور پریشانیاں آپ کو توڑ نہیں پا رہی ہیں، مضطرب نہیں کر پا رہی ہیں، آپ کے بیلنس کو شیک نہیں کر پا رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے دست شفقت آپ کے سر پر ہے، آپ کے دل پر خدا کا ہاتھ ہے. اور یہ جتنی بھی خرابیاں اور پریشانیاں ہیں، یہ سب کی سب آپ کو بہتر بنائیں گی اور بنا رہی ہیں، اور ان میں سے کوئی چیز بھی آپ کے خرابی کے لیے نہیں ہے. یہ اس کی سب سے بڑی علامت ہے. اور ہمارے لیے جو اس کی بہت بزرگ ترین مثال ہے، وہ خود کربلا ہے. بزرگ ترین مثال جو ہے ہمارے لیے وہ کربلا ہے، کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا اطمینان تو ایک طرف، لیکن اس سے ہٹ کر جو عورتوں اور بچوں نے جس اطمینان کا مظاہرہ کیا بعد از عاشور، وہ اور زیادہ، وہ بہت بڑی ایگزامپل ہے. کہ بہت سارے افراد یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو امام تھے، ان سے تو ایسی چیزیں ایکسپیکٹڈ تھیں، حالانکہ یہ طریقہ غلط ہے، یہ سوچنے کا یہ انداز غلط ہے. میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ انداز غلط ہے. امام اور رسول کو خدا نے بھیجا ہی ہماری پیروی کے لیے کہ ہم ان کی اتباع اور پیروی کریں، نہ کہ ہم یہ کہہ کے ان سے الگ ہٹ جائیں کہ وہ کیسے ہمارے لیے قابل پیروی ہو سکتے ہیں. تو سوچ ہی بالکل بیکار ہے. لیکن اسٹل کہ اگر ہم کہیں کہ امام حسین علیہ السلام ایک بہت غیر معمولی انسان تھے، تو وہ عورتیں اور بچے جو انہیں طبعاً فزیکلی ضعیف ہیں، کمزور ہیں، انہوں نے جس اطمینان اور استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، وہ ہمارے لیے بہت بہت بڑی مثال ہے اس چیز کی کہ اگر انسان کا دل، انسان کا قلب خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو اس دنیا کی کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی جو ہے، وہ انسان کو مضطرب نہیں کر سکتی، شکستہ نہیں کر سکتی. اور یہی مین ٹیسٹ ہے جس پر مجھے اور آپ اپنے آپ کو ہمیشہ پرکھتے رہیں، کہ زندگی کی آزمائشات مجھے خدا سے نزدیک کر رہی ہیں یا دور کر رہی ہیں. اگر آپ کے اندر سکون اور اطمینان اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، حق کی محبت، حق سے ارتباط بڑھتا چلا جا رہا ہے، ڈزنٹ میٹر زندگی میں ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ ہم بہت اچھے حالات میں اور اس کے باوجود ان سب چیزوں میں کمی واقع ہوتی چلی جا رہی ہے، جیسے قرآن کریم نے منافقین کی ایک کوالٹی بتائی ہے، یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہر بلند ہونے والی چیخ ان کے اوپر آ رہی ہے. یعنی میں اگر معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہوں، اس پر میں 2013 میں جب میں نے پاکستان میں شرح پڑھا تھا، تو اس پہ تھوڑا سا میں نے وہ بھی کیا تھا لوگوں کو، کہ ایک بڑی پینک والی سچویشن تھی وہاں کراچی میں، کہ مومنین قتل ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ حساب کتاب لگا کے دیکھ لو کتنے لوگ مارے گئے ہیں، کیا ہے، آپ میں سے ہر ایک ایسے بیٹھا ہوا ہے کہ بس اب میں گھر سے نکلوں گا، مر جاؤں گا، مار دیا جاؤں. مطلب یہ صحیح طریقہ نہیں ہے رہنے کا. انہی چیزوں سے ایمان ٹیسٹ ہو جاتا ہے. اسی قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، کہ جب زندگی میں یہ حالات یوں الٹتے پلٹتے ہیں، وہیں پر ایمان ٹیسٹ ہو جاتا ہے. کہ आप ठीक है, आप इकदाम करें नहीं करें, आप अपने को बच, लेकिन ये जो इज़्तिराब है ना दिल का, ये बता देता है कि इंसान खुदा से कितना नजदीक है, दूर। अलाम ज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, ये खुदा की गारंटी है कि अगर तुम मेरी याद में हो तो तुम्हारा कल्ब लाजमन मुतमईन है, और जिस कल्ब में इत्मीनान और सुकून नहीं है वो जिक्र इलाही से खाली है। और जिक्र का मतलब याद है। जिक्र का मतलब याद है, ठीक है। तो ये है मुख्तसर। हम बात कर रहे थे दुनिया के हवाले से, और छठी हदीस थी चहल हदीस में, क्या हदीस में पढ़ देता हूँ कि छठे इमाम फरमाते हैं कि जो सुबह और शाम इस हालत में करे कि उसका सबसे बड़ा मसला दुनिया हो, अकबर हम में ही, कि उसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा मसला उसके सामने वो दुनिया है। जाएल अल्लाहुल फ़क्र बैन आइनाई है, अल्लाह उसकी दोनों आँखों के बीच में फ़क्र को लिख देता है। अच्छा, फ़क्र का मतलब पता है क्या है? थोड़ा सा हदीस को भी ज़रा और डिटेल में, फ़क्र के माने मैंने अर्ज़ किए थे, फ़क्र यानि फ़क्र यानि कम्प्लीट मोहताजी, कि जिसका जिसकी बैकबोन ब्रेक हो जाए वो फ़ाकिर है, और जिसकी बैकबोन ब्रेक हो जाए वो ज़मीन से उठ नहीं सकता जब तक कोई उसका हाथ पकड़ के ना उठाए। तो फ़क्र यानि मुकम्मल मोहताजी। तो इसमें आप इस बात को देखेंगे, खुदा ये नहीं कह रहा कि जो दुनिया को सबसे बड़ा मसला बना के सुबह और शाम करता है मैं उसे माल नहीं दूंगा, बल्कि उसकी आँखों के दरमियान फ़क्र को लिख देता है, अल्लाह करार दे देता है। यानी क्या मतलब है कि वो टोटली मोहताज बन के रहता है दूसरों का, ठीक है। टोटली यानी इंसान की फजीलत क्या है? इंसान की फजीलत यह है कि ज्यादा से ज्यादा उसकी एहतियाज अल्लाह की तरफ हो और कम से कम बंदों की तरफ हो। लेकिन अगर आपको सुबह से शाम तक लोगों की जरूरत पड़ रही है, सुबह से शाम तक, तो ये फकीरी है, दौलतमंदी नहीं है। और उसमें पता है सबसे बड़ा मसला क्या होगा कि एक दिन ये आएगा कि जब ये सारे के सारे लोग आपकी खिदमत करने के लिए मौजूद नहीं होंगे, जब ये लोग खिदमत करने के लिए, और आप इस बात को सोचें कि अगर ये तमाम लोग उससे हटा लिए जाएं, मतलब जो नौकरों की मिसाल के तौर पर एक फौज है, अगर ये हटा ली जाए उस शख्स का क्या हाल होगा जिसको इसकी आदत पड़ चुकी है। तो ये भी फ़क्र है। फ़क्र यानी एहतियाज, मोहताजी। उसकी आंखों के दरमियान लिख देता है, उसके उमूर को परागंदा कर देता है, और उसको दुनिया में से नहीं मिलता मगर जितना उसकी किस्मत में लिख दिया गया था। और जो शख्स इस हालत में सुबह और शाम करता है कि उसका सबसे बड़ा हम यानि मसला प्रॉब्लम आखिरत हो, अल्लाह गना को यानि बेनियाजी को उसके कल्ब में डाल देता है और उसके तमाम उमूर को कंसोलिडेट और इंटीग्रेट कर देता है, जमा कर देता है, कि उसके उमूर परागंदा नहीं होते, उसके उमूर मुंतशिर नहीं होते। उमूर मुंतशिर होने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इंसान की शख्सियत बट के और तकसीम होकर रह जाती है। अब इस जुमले को गौर से समझिएगा, आप पहुंचे मैंने क्या बात कही। अगर इंसान के उमूर परागंदा हो और इंसान के उमूर जमा हो, यह चीज डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करती है इंसान की अपनी पर्सनैलिटी की तरफ। जिसके उमूर परागंदा हैं उसकी पर्सनैलिटी उतने ही हिस्सों में बढ़ जाती है, और जिसके उमूर जमा हैं मुजतमे हैं उसकी पर्सनैलिटी मुख्तलिफ कामों में मशगूल होने के बावजूद एक इकाई के तौर पे बाकी रहती है। बात वाज़ेह हो रही है? नहीं। हम क्या होते हैं? हम सुबह की नमाज के लिए उठते हैं, हम एक शख्स होते हैं। उसके बाद जब हम अपने दफ्तर के लिए तैयार कर रहे हो रहे होते हैं, हम पर्सनैलिटी नंबर टू हो जाते हैं। उसके बाद जब हम जाके दफ्तर में बैठ के काम कर रहे होते हैं, पर्सनैलिटी नंबर थ्री हो जाते हैं, एंड सो ऑन। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मेरी जिंदगी एक इंटीग्रेटेड होल नहीं है, उमूर परागंदा है। नमाज अलग है, कुरान अलग है, घर वाले अलग हैं, जॉब अलग है, रिस्क का उसूल अलग है, सब अलग अलग है। लेकिन जैसा कि दुआए कुमैल के जुमले हैं कि कुल्लुहा विरदम वाहिदा, कि मेरे तमाम विरद को अल्लाह एक कर दे, मेरे तमाम उमूर को खुदा एक लड़ी में पिरो दे, तो इसका मतलब क्या है कि इंसान अपने फैमिली में हो, अपनी जॉब पर हो, अपने काम में हो, कारोबार में हो, हालत इबादत में हो, नमाज शब में हो, उसकी पूरी शख्सियत एक साथ ग्रो कर रही होती है, डेवलप हो रही होती है। क्यों? इसलिए कि वो तमाम के तमाम काम किस लिए कर रहा होता है? अपनी आखिरत को फोकस करके और अपने रब की खुशनुदी के लिए। बाकी उसके पास और कोई चीज़ ही नहीं है जिसके लिए वो हरकत कर रहा हो, जो चीज़ उसको हरकत में ला रही है। ठीक है, तो यानी इससे आप एक बात जो बड़े अहम हमें समझ में आती है कि हम लोग इस गलतफहमी का शिकार रहते हैं कि ये तमाम की तमाम हदीसें जो है ना, ये कोई गैर मुस्लिमों के लिए हैं, या कुरान करीम ने ऐसी जितनी बातें की हैं जिनमें मुजरमीन की बात है, जिनमें काफिरीन की बात है, तो हम ये समझते हैं कि ये सारे के सारे जो उनके लिए जो नॉन मुस्लिम हैं, जबकि इनका इतलाक शायद मुसलमानों के ऊपर ज़्यादा होता है। मुसलमानों को ज़्यादा एड्रेस किया गया है इसमें कि तुम होशियार रहो, तुम खबरदार रहो कि तुम इन सारे ट्रैप्स में नहीं फंसना, तुम कुफरान नेमत करने वाले नहीं बन जाना, तुम इस तरीके से ना हो जाना कि तुम ज़ाहिरन मुसलमान हो लेकिन तुम्हारा दिल दुनिया में फंसा हुआ है या गैर खुदा के लिए के अंदर मशगूल है। जी देखिए, आँखों के बीच में जो बात है, यानी या तो ये बात है कि जैसे आँखों के बीच का मतलब एक नज़्बुल ऐन है, यानी कि जिस पर आपके फोकस है, फोकस रहता है या तवज्जो रहती है, और शायद उससे ये बात खुदा हमको समझाना चाह रहा है कि ऐसा शख्स अपने भागता हमेशा दौलत के पीछे और ज़्यादा से ज़्यादा आसाइश के पीछे है, लेकिन उसको मिलती जो है वो फ़कीरी है, यानी जो चीज़ इनफैक्ट उसके फोकस में है वो फ़कीरी है।
जी, ये अगर हम इस लिटरल मीनिंग ले लें
जी,
तो जब हम उठते हैं, जब उठता हूँ, मेरी पहली सोच ये होती है कि ऑफिस के तो जब सोने लगता हूँ तो कब सोऊंगा, तो कब ऑफिस पहुंचूंगा, ये सारी पहले हिस्से की तरफ जा रही है।
देखिए इंसान, यानी कुरान और मासूम ने, कुरान और मासूम ने, देखें गौर करें, कुरान और मासूम ने जो है ना किसी को भी लेबल नहीं किया है, किसी भी इंसान को लेबल नहीं किया इनफैक्ट कि ये है और ये है, बल्कि हर चीज़ के लिए अलामतें और निशानियां बता दी हैं, पैरामीटर सेट कर दिए हैं, और उन पैरामीटर्स के साथ वो टैग लगा दिए गए। इन्हें अगर ये कंडीशन, ये मेयार पर आप पूरे उतर जाएं, अपने आप को समझें कि मैं आऊं। अगर आप इन मेयार पे पूरे उतरते हैं तो अपने आप को समझिए आप यहाँ। ये हम हैं जो अपने आप को जो मुख्तलिफ किस्म के उसमें कैटेगरीज और क्लासिफिकेशन में रख रहे होते हैं, विदाउट डूइंग एनीथिंग और विदाउट एक्चुअली पासिंग थ्रू एनी एग्जामिनेशन और इस किस्म की बातें। सही है, तो जो चीज़ भी कुरान करीम बयान कर रहा है वो यही बिल्कुल क्लियर बात है कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुदा से दूर है, खुदा से दूर होने का मतलब ये है कि अगर वो अपने हर अमल से तकर्रुब इलाही की ख्वाहिश नहीं रखता, और अगर उसके तमाम आमाल का फोकस आखिरत की तरफ नहीं जा रहा है, यानी आखिरत की तरफ जाने का मतलब ये है, आखिरत में दो बातें मेन है, अगर आप कुछ भी ना समझें آخرت کے حوالے سے تو دو باتیں ضرور سمجھ لیں. پہلی بات یہ کہ جس زندگی میں میں ابھی ٹائم اپنا گزار رہا ہوں یہ فقط اور فقط آزمائش ہے اور انتہائی ٹیمپرری ہے. مطلب ٹیمپرری نہیں انتہائی ٹیمپرری ہے, کیونکہ قرآن کریم نے بار بار یہ لفظ استعمال کیے ہیں اور رسول اپنے رسول کو تسلی دی ہے کہ اے رسول تم ان لوگوں کی بدتمیزی اور بےہودگی اور ان سب چیزوں پر مت دل لگاؤ, مت رنجیدہ ہو. یہ جو ہیں جب ابھی ہمارے بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو یہ خود ہی کہیں گے کہ ہم اس دنیا میں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ رہیں. مطلب یہ انتہائی ٹیمپرری ہے, بہت ہی مختصر ہے. تو ایک یہ بات کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ میری اصل لائف کہیں اور ہے, ٹھیک ہے, یہ میری اصل لائف نہیں ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ میں اپنے ایمان اور عمل کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں. یعنی آخرت کا مطلب یہ دو باتیں لے کے چلنا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یا جو کچھ بھی نیت کر رہا ہوں, یعنی کرنے میں دو چیزیں, نیت, ارادہ اور اپنے اعضاء سے عمل, تو ان کے لیے میں اکاؤنٹیبل ہوں. اور یہ جو اس لائف میں میں موجود ہوں یہ بالکل ٹیمپرری اور بہت مختصر ہے, اور میری اصل زندگی کہیں اور ہے جس کے لیے مجھے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے, جس کے لیے سامان فراہم کرنا ہے. تو اگر یہ دو باتیں کوئی شخص اپنی زندگی میں کامیابی سے لے کے چل پا رہا ہے تو وہ مومن ہے. اور یہ اس حالت سے, یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حالت انسان پر خالی نماز میں طاری ہو اور جب عبادت کے وقت ہو اور اس سے ہٹیں تو پتہ چلا ہم باہر نکل جائیں پھر ہم دنیا دار بن جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کنڈیشن تھی دیٹ ڈڈ ناٹ سیٹس ان, یعنی کہ وہ ہمارے اندر ٹھہری نہیں ہے, وہ مضبوط نہیں ہے, بلکہ اس کی جو, یعنی کہ جو جتنی بھی باتیں ہم کر رہے ہیں یہ ایک تصویر کی طرح ہیں کہ جب کوئی اور تصویر آتی ہے تو وہ اس کو ہٹا دیتی ہے, وہ تصویر آ جاتی ہے, پھر یہ تصویر آتی ہے تو اس کا عکس پڑنے لگتا ہے. یعنی کہ یہ ہے, یعنی کوئی پرماننٹ چیز ہمارے اندر نہیں ہے, یہ بالکل کلیئر ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی ایسی نہیں بات نہیں ہے کہ دو رائے ہوں, اور یعنی کہ جیسے اس کے ایک آدھ بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ اس میں اور کیا چیز ہوتی ہے, اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں, کہ جو شخص اللہ کی خاطر زندگی گزارتا ہے وہ حقیقتاً لوگوں پر نا امیدوار ہوتا ہے نہ لوگوں پر ناراض ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بلکہ اس کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی ہدایت اور بھلائی کے لیے کچھ کروں. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے, بہت بڑی مثال ہے جو ہم تقریباً کبھی بیان ہی نہیں کرتے, کہ امام علی علیہ السلام کو جب امت مسلمہ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا 11 ہجری میں, تو امام علی علیہ السلام نے اگلے 25 سال تک آبادیوں کو پروان چڑھائے, آبادیاں بنائیں, یعنی آپ لوگوں کے درمیان نکل گئے, معاشرے میں نکل گئے, آپ نے پانی کے مسائل حل کیے ہیں, کاروبار کو فروغ دیا ہے, آبادیاں ڈیولپ کی ہیں, غریبوں کا معیار زندگی بہتر بنایا ہے, نخلستان لگائے ہیں, یہ سب کام آپ نے کیا, ٹھیک ہے. یعنی کہ ہر انسان کیا ہے کہ جو انسان واقعا خدا کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے نہ وہ لوگوں سے امیدوار ہوتا ہے نہ ناراض ہوتا ہے. ایون ہے کہ لوگ چاہے اس کو دیں یا اس سے بدتمیزی کریں, بدسلوکی کریں, کیونکہ اس کا کام ہی نہیں ہے لوگوں سے. لیکن ہم اپنی زبان سے یہ سب باتیں بہت کرتے ہیں کہ جی میں خدا کے لیے زندگی گزار رہا ہوں, لیکن جہاں لوگوں کی ذرا سی کچھ چیزیں آتی ہیں پھر دیکھیں ہمارا کیا حال ہوتا ہے. یعنی دو آدمی میری تعریف کر دیں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے, دو آدمی میری برائی کر دیں تو میں مایوس افسردہ ہو جاتا ہوں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں نا یہ پیرامیٹرز ہیں کہ قرآن اور معصوم نے یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے سامنے لیٹ ڈاؤن کر لیں کہ اس پر اپنے آپ کو پرکھتے رہو, اس پر اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے رہو مسلسل ڈیلی بیسس پر, اور یہ دیکھتے رہو کہ ویئر ڈو یو لائیو, یعنی ویئر ڈو یو ایگزسٹ, इस पूरी लाइन में आप कहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, इसमें एक बात तो हमारे सामने बहस में क्लियर हो गई थी ना कि दुनिया का एक पहलू काबिल मजम्मत है और दुनिया का एक पहलू काबिल तारीफ नहीं है। तारीफ नहीं कह सकते, लेकिन यूं कह लें कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी किस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि ये दुनिया हमारी एकेडमी है, और अगर हम इस एकेडमी में अपनी तरबियत नहीं कर पाए तो इसके बाद हमारे लिए कोई मौका नहीं है अपनी तरबियत करने का। इस लिहाज से ये बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है, और इसी को इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये दुनिया क्या है, मतजर औलिया है। कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के जो जुमले हैं कि आपने फरमाया इन्नत दुनिया दारु सिद्क़िन लिमन सदक़हा, कि बेशक वो लोगों उन लोगों के लिए कि जो इसमें सच्चाई तलाश करते हैं उनके लिए दुनिया दार सिद्क है। व दारो आफियतन लेमन फहम अनहा, और जो दुनिया की हकीकत को समझ ले उसके लिए दार आफियत है, दुनिया उसको नुकसान नहीं पहुँचाती। व दारो गनन लेमन तजब वदा मिनहा, जो दुनिया में से अपना साजो सामान इकट्ठा करने पर आमादा हो जाए, ये दुनिया उसको गनी कर देने वाली है, उसको गनी बना देने वाली है। वदारो मौइज़ातन लिमन तअज़ बिहा, जो दुनिया से इबरत और वाज ले दुनिया उसको नसीहत करने वाली है। मस्जिद अहिब्बा अल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करने वालों की मस्जिद। व मुसल्ला मलाइकत अल्लाह, अल्लाह के फरिश्तों का मुसल्ला। व महबत वही अल्लाह, अल्लाह की वही नाजिल होने का मकाम। व मत जरो औलिया अल्लाह, और औलिया खुदा के लिए तिजारत करने की जगह जहाँ वो खुदा के साथ तिजारत करते हैं। इक तसबू फी हर रहमा, इस दुनिया में जब तक हो तो रहमतों को कस्ब करो। व रबाहू फी हल जन्ना, और यहाँ पर जन्नत की तिजारत कर लो। इस काम के लिए दुनिया ये, इस काम के लिए नहीं है कि दुनिया का माल बैठ के जमा करते रहोगे मेरा माल है। तो मैं कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ कि कुरान करीम ने बहुत क्लियर वर्ड्स में कहा है कि दुनिया में जितना जो कुछ है ये सब का सब तुम्हारी आजमाइश के लिए, इसमें से कोई माल तुम्हारा नहीं है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। बकदर ज़रूरत इसे लो, किस लिए लो, ताकि ये सब कर सको, अपना असल घर बना सको, अपना असल सरमाया इकट्ठा कर। इस लिहाज से दुनिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है हमारे लिए, ठीक है। और दूसरी तरफ मजम्मत क्या है कि रासु कुल खतीअतिन हुब्बुद दुनिया, ये भी हदीस है कि हर खता, हर बुराई की जड़, उसका सर, रास यानी सर, दुनिया की मोहब्बत है, ठीक है। इस लिहाज से क्या है, ये पैराडॉक्सिकल है, बात वाजे हो रही है ना, कि इसकी बेहतरीन मिसाल जैसे मैंने अर्ज की थी वो अकेडमी की मिसाल है, कि जब आप किसी एकेडमी में जाते हैं, हॉस्टल में जाते हैं, कि जिसको बेहतरीन तरीके से इक्विप्ड कर दिया गया हो आपकी तालीम व तरबियत के लिए, तो वहाँ पर आपका सरमाया तालीम व तरबियत होती है, ना कि वहाँ पर मौजूद चीज़ें। आप कहेंगे यहाँ के कंप्यूटर मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और यहाँ की लाइटें मुझे बड़ी अच्छी दिख रही हैं, उन सबको जमा करना शुरू कर दें तो क्या होगा, आखिर में इंसान को सब कान पकड़ के ले लिया जाएगा, उसको कहे निकलो यहाँ से, क्योंकि यहाँ तो माए हो साल दो साल के लिए। हमने इसको बेहतरीन तरीके से सजाया है, इसलिए नहीं कि जो सजावट है वो तुम्हारा माल है, बल्कि इसलिए इसको बेहतरीन अंदाज से इक्विप किया है ताकि तुम बेहतरीन तालीम और तरबियत हासिल कर सको। इसलिए दुनिया को बेहतरीन, अब हम इसी पे ही फरिश्ता हो गए, जो काम करना था, जो अपना सरमाया था, अपने सरमाए से गाफिल हो गए और पूरी जिंदगी बेवकूफों की तरह दुनिया का माल जमा करते रहे, ये देखे बगैर कि आज तक इस दुनिया से कोई कुछ लेके जा नहीं सका। हमारे सामने सैकड़ों हजारों लाखों लोगों की मिसालें, यानी फिरौन, नमरूद, कारून, हमारे सामने शहनशाह ईरान, और ना मालूम कौन कौन से अफराद कि जिन्होंने जब 1970s में, इनके शायद 77 की बात है कि जो 2500 साल, क्योंकि इन्होंने अपने आप को पता नहीं रिश्ता कहाँ से जोड़ा था ईरान के कदीम बादशाहों से, 2500 साल जश्न ताजपोशी मनाया था इन्होंने ईरान में। तो पेरिस के आप कोई जो सबसे मशहूर रेस्टोरेंट है उसके साथ ये था कि ताज़ा पक्का हुआ खाना वहाँ से उस तकरीब में आएगा, ये सोच लें हम, ये इंतज़ाम था। यानी एक फ्लाइट, चार्टर्ड फ्लाइट मौजूद थी कि वो ताज़ा पक्का हुआ खाना पेरिस से उस तेहरान, कहाँ गया ये सब, कहाँ गया, कहाँ गया ये सब। और फिर जब इमाम खुमैनी वापस आए थे 1979 में, और पहले तो वो सीधा सीधा कुम गए थे, क्योंकि उनसे जब वापस इवन आ रहे थे जहाज़ में तो लोगों ने सवाल किए थे, मतलब नामा निगार और अखबार वालों ने, कि आप, यानी जैसे ना कि आपको बहुत बड़ा आपने तो कारनामा अंजाम दे दिया है, क्योंकि जब वो वापस आ रहे थे तो शाह फरार कर चुका था, तो कि बहुत बड़ा है, आपने तो बड़ा ही ज़बरदस्त काम कर दिया है, तो पता नहीं अब क्या होगा। तो उनके तासरात बहुत ही जस्ट नॉर्मल। तो ने कहा आपने क्या, ने कहा मैं कुछ नहीं, मेरा एक फरीज़ा था, मैंने वो अदा कर दिया है, लोगों के हाथ में हुकूमत होगी, मैं जो अब कौम में अपना घर छोड़ के आया था चला जाऊँगा वहाँ पर, और मैं जो ईरान से जलावतन से पहले जो दरस व तदरीस का काम कर रहा था वो शुरू कर दूँगा। मैंने जो एक खुदाई फरीज़ा अपना है वो अंजाम दिया है, कि मैं कौन सा किंग हूँ या मैं कौन सा वो हूँ कि जो हुकूमत पर कब्ज़ा करने जा रहा हूँ बैठने। तो बहरहाल वो सीधा कुम चले गए थे, फिर वहाँ क्योंकि कुम की आबो हवा बहुत सख्त है, अब तो बहुत बेहतर हो गई, उस वक्त तो बहुत ख़राब, पानी बहुत ख़राब था, हवा बहुत सख्त थी, तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर डॉक्टरों ने कहा कि आप किसी और जगह पे जाएं, तो हुकूमत ने जाहिर है सब कुछ हवाले कर दिया, शाह के महल की ऑफ़र की, वहाँ चले जाएँ, इतने मतलब सैकड़ों के हिसाब से बैग्स लोगों ने सोने और हीरे जवाहरात से भर भर के पेश किए थे मुमलिकत का निज़ाम चलाने के लिए और उस सब चीज़ों के लिए। तो उन्होंने सब दे दिए, जैसे रईस हौजा थे जो जिम्मेदारान थे उन सब को, कि आप लें और वो करें। तो ये जो इंसान है ना, ये वो शख्स है कि जो हमारे सामने, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत बेहतरीन मिसाल है कि इंसान मोमिन के लिए दुनिया क्या होती है। यानी ऐसा नहीं होता कि वो बेअमल है, ऐसा नहीं होता कि वो दुनिया में किसी काम से ताल्लुक नहीं रखता है, लेकिन वो जो कुछ भी कर रहा होता है ना, वो तकर्रुब खुदा के लिए करता है, अपनी आखिरत को फोकस करके करता है। उसकी नज़र में ये सब चक्करबाजियाँ नहीं होती हैं कि मैं जो हूँ अब सरबराह मुमलिकत बन जाऊँगा, तो अब मैं ये मेरा नाम होगा मेरे नाम के, वो ठीक है लोगों ने अकीदत में ये किया वो किया वो किया, लेकिन बिल्कुल साफ था कि उनकी नज़र में इन चीज़ों की कोई वर्थ नहीं है, कि अगर करेंसी नोटों पे मेरी तस्वीर छप जाती है और मैं ये, मतलब इट वर्थ्स नथिंग। और इन असल वर्थ क्या है, असल वर्थ यही है कि मैंने अपनी ज़िंदगी जो गुजारी है, इस ज़िंदगी की खुदा की बारगाह में क्या कदर कीमत है, This is my true problem. यानी मेरे लिए जो मसला है, मेरे लिए जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि मैंने जो भी किया और अपनी ज़िंदगी को जैसे गुजारा, तो वो ज़िंदगी खुदा की बारगाह में कहाँ पर स्टैंड करती है, किस जगह पर है। ठीक है, तो इस लिहाज से ही जो ये दो बातें हैं कि यानी वो इंसान जो इस दुनिया की ज़िंदगी में फंस जाए और इन चीज़ों से अपना दिल लगा ले, हुब दुनिया, तो हर बुराई का सर ये मोहब्बत है। और वो इंसान जो इस दुनिया को तिजारत गाह समझता है, मस्जिद समझता है, खुदा से लेन देन का बाजार जानता है, तो उसके लिए दुनिया बेहतरीन जगह है। ठीक है, और ऐसा शख्स कभी भी बेअमल नहीं है। मैं एक चीज़ और कुरान करीम से अगली दफ़ा इंशाल्लाह इसमें जो कुछ अहादीस हैं उससे करके इसको ख़त्म कर देंगे बात को। मैं कुरान करीम से चाह रहा था कि एक मकाम से इसको ज़रा सप्लीमेंट कर दूं, और ये है सूरह यूनुस। सूरह यूनुस की تین چار آیتیں کہ تاکہ ہمیں دنیا اور دنیا پرستی والے جو باتیں ہیں نا ذرا امور وہ تھوڑے سے اور سمجھ میں آ جائیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے بہت شروع میں دنیا کی تعریف کے حوالے سے آپ لوگوں کے قرآن کی آیت پڑھی تھی, وہ کون سی تھی؟ سورہ حدید آیت نمبر 20. اور اس میں ہم نے اس بات کو کلیریفائی کیا تھا کہ خدا نے دنیا کو زمین اور آسمان نہیں کہا ہے, یعنی زمین اور آسمان یا یہ فزیکل ورلڈ دنیا نہیں ہے, بلکہ دنیا حقیقتاً انسان کی اس کے اندر ایک ٹائم پیریڈ گزارنا اور اس میں انوالومنٹ کا نام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے کہ جس کو حیات دنیا کہا گیا ہے وہ حیات دنیا میرا اور آپ کا یہاں پر ایک ٹائم گزارنا اور ان کے ساتھ انٹریکشن ہے, اس انٹریکشن کا نام دنیا ہے, نہ کہ آسمان اور زمین اور مظاہر قدرت و فطرت کا نام دنیا ہے. یہ بات ہمیں بہت زیادہ کلیئر ہونا چاہیے, یعنی کہ یہ وہ کنسیپٹ ہے جو بالکل قرآن کریم نے واضح کر کے بیان کیا. اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس انٹریکشن میں گڑبڑ کرتے ہیں, یعنی اگر ہم اس انٹریکشن کو خدا والا بنا دیں تو یہی دنیا آخرت بن جاتی ہے, اور اگر ہم اس انٹریکشن کو اپنی ذات اور اپنی خود غرضی کی طرف لے جائیں تو یہی دنیا وہ پست اور رذیل چیز بن جاتی ہے جو ہر برائی کی جڑ ہے. کلیئر ہے یہ بات؟ یعنی ہمارا اس لائف کے ساتھ انٹریکٹ ہونا, کنیکٹ ہونا, یہ دنیا ہے. اور اس کے حوالے سے خدا نے بتایا کہ وہ جو انٹریکشن ہے وہ کیا ہے, پانچ چیزیں, لعب ہے, لہو ہے, اور زینت ہے, تفاخر ہے, اور تکاثر ہے. اور اگر تم اس کو آخرت بنانا چاہتے ہو تو تمہیں اس لعب و لہب والے انٹریکشن کو خدائی اور الہی انٹریکشن میں کنورٹ کرنا پڑے گا. یہ بات ہے. یعنی کہ جیسے ہمارے سامنے آئمہ علیہ السلام کی مثالیں ہیں کہ جن میں سے کوئی نبی, کوئی امام ایسا نہیں ہے کہ جس نے کسی جنگل میں زندگی گزاری ہو, جو لوگوں کے درمیان نہ ہو, جس نے یعنی کہ لوگوں کے ساتھ بھرپور انٹریکشن نہ کیا ہو, کوئی بھی نبی اور امام ایسا نہیں. لیکن فرق کیا تھا کہ ہم جب لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس میں جو بنیاد ہے, فوکل پوائنٹ ہے, وہ میری اپنی ذات ہوتی ہے. میں آپ کے ساتھ اس لیے انٹریکٹ کرتا ہوں کہ میں ان دا بیک آف مائی مائنڈ کیا ہے کہ میں آپ سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں, آپ مجھے کس کس جگہ پہ بینیفٹ دے سکتے ہیں. اور ان کے لیے کیا تھا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کس لیے لوگوں سے ملے, کہ میں لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں, میں کس کو بہتر بنا سکتا ہوں, میں کس کو فائدہ دے سکتا ہوں, میں کس کو اس کی انسانیت میں بلند کر سکتا ہوں, میں کس کو اس گڑھے سے باہر نکال سکتا ہوں. کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی لوگوں سے اس نیت سے ملاقات کی, اور وہ ایسا کرنے میں کیوں کامیاب ہوئے, اس لیے کہ ان کے دل ہما وقت خدا کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے, یہ اہم ترین بات ہے کہ جس انسان کا دل خدا والا نہ ہو, خدا کے ہمراہ نہ ہو, وہ کبھی بھی انسانوں کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا. وہ جب بھی لوگوں کے ساتھ ملے گا خود غرضی کی بنیاد پہ ملے گا, ایکسپلوائٹ کرے گا لوگوں کو. تو یہ آیتیں ہیں سورہ یونس کی, چار پانچ آیتیں, آیت نمبر 22 آنورڈز. اور میں جلدی جلدی کر کے آخر میں ایک دو پوائنٹس آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہو الذی یسیرکم فی البر والبحر, اللہ وہ ہے جو تم کو سیر کراتا ہے خشکی میں اور تری میں. حتی اذا کنتم فی الفلک, یہاں تک کہ تم کبھی کشتی میں سوار ہوتے ہو. وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا, اور وہ کشتی جاری ہوتی ہے, چلنا شروع ہو جاتی ہے, اور اچھی خوشگوار ہوا جس سے تو بڑی خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہو وہ چل رہی ہوتی ہے. جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ, यहाँ तक कि हवा क्या हो जाती है, तेज और तुंद हो जाती है। वो हवा जो बड़ी ठंडी और खुशगवार थी, अब वही हवा तेज और तुंद हो जाती है। وجاءهم الموج من كل مكان, और हर तरफ से, हर मकान से उसके ऊपर मौज आ रही है, यानी हवा तुगयानी तूफान और पानी की मौजें हर तरफ से। وظنوا انهم احيط بهم, और वो लोग जो किश्ती में सवार हैं उनको अब ये ख्याल होने लगा कि अब वो गए, घेर लिए गए हर तरफ से, हर तरफ से घेर गए, कोई मकाम नहीं है फरार का, कोई मकाम नहीं है निकलने का, बचाव का। दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, तो उन्होंने दुआ की, पुकारा अल्लाह को अपने दीन को उसके लिए खालिस करके, मुखलिस होके। ठीक है, इस पर हम बात कर चुके हैं ये सब के, अब इतनी सी देर में, यानी इसका मतलब क्या है, इसमें बहुत अहम नुक्ता जो बार बार जहन में दोहराने की ज़रूरत है कि इंसान के मुखलिस होने के लिए मदरसे, मकतब, मजलिस की ज़रूरत नहीं है। इंसान के मुखलिस होने के लिए फ़कत और फ़कत अपनी फितरत की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने किसी मदरसे में नहीं दाखिला ले लिया था उस किश्ती में कि जिसकी वजह से वो मुखलिसीन हो गए थे। सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन कि कोई बचाने वाला नहीं है, अब किसी तरफ से कोई बचाव नहीं है, और उस फितरत की हकीकत का उभर के ऊपर आ जाना कि मेरा, जो मैं भी आप आपसे कह रहा था कि मेरा जिंदगी में मामला किसी से नहीं है, फकत अपने रब और खालिक से। तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि अगर इधर उधर जो है चीज़ें आपके मुखालिफ हों, मुआफिक हों, फेवर में हों, कुछ भी हों, अगर वो आपके साथ हैं तो यू आर विनर, ये मुखलसीन अलाउद्दीन। ठीक है, वो चीज़ ऊपर उठ के सामने आ गई, क्या हुआ, लइन अंजैतना मिन हाज़िही लनकूनन्ना मिन शाकिरीन, और उन्होंने क्या कहा कि अगर तूने हमें इससे निजात दे दी तो हम यकीनन शाकिरीन में से हो जाएंगे। यहाँ पे लफ्ज़ शाकिरीन बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, यानि इंसान चाहे मोमिन या गैर मोमिन, हकीकतन या खुदा का काफिर है या शाकिर है, यानी यहाँ पर काफिर बिलमुकाबिल शुक्र है, कुफर बिलमुकाबिल शुक्र है, यानी या हम शुक्र का क्या मतलब है, आप जब तक अल्लाह की नेमतों को एक्नॉलेज नहीं करेंगे शुक्र कर पाएंगे, बताएं शुक्र करने की पहली मंजिल क्या है, खुदा की नेमतों को एक्नॉलेज करना, कबूल करना, फिर शुक्र करेंगे ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो शख्स अपनी जिंदगी में अल्लाह की नेमतों को आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है, उनका शुक्र गुजार होता है, वही हकीकतन खुदा के लिए तरफ मुतवज्जे होता है। कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम सुबह से रात गुजार जाते हैं हजारों नेमतों में गर्क, एक नेमत का शुक्र नहीं अदा करते। ठीक है, और एक कांटा चुभ जाता है ना पैर में, उस पर रोना शुरू हो जाते हैं कि अल्लाह ने ये कर दिया, वो कर दिया, और ये मुश्किल, वो मुश्किल। लेकिन हर लहजा, हर लम्हा जो मतलब अनगिनत नेमतें हैं कि कम से कम हम अपने दिन में थोड़ा सा ठहर के इसी बात का शुक्र अदा कर लिया करें कि मेरे जिस्म के अंदर जितने निज़ाम सही सही चल रहे हैं उन पर अल्लाह का शुक्र। अगर इनमें जर्रा बराबर कोई एक ब्लड क्लॉट बीच में फंस जाता है, क्या हाल होता है इंसान का, एक मसल पुल हो जाती है, क्या असर होता है। हम पूरा दिन अल्लाह की नेमत से इस्तफादा कर रहे होते हैं, बेशबहा नेमतों से, कभी इतना ख्याल हमें नहीं आता है कि इस पर कि ऐ खुदा आज के दिन तूने सही सलामत जो ये सेहत अता की, और सेहत कैसे मिली कि ये जितने निज़ाम हैं, मतलब इंसान का वजूद, बॉडी कितना डायनामिक सिस्टम है, हर चीज़ सही चली, हर चीज़ ने अपना काम सही किया, किसी चीज़ ने मुझको तकलीफ नहीं दी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये है शाकिरीन, शुक्र। तो अल्लाह ने क्या क्या, फलम मान जा हूँ, हमने उनको निजात दे दी। इज़ा हम यबूत फिल अर्ज बग़ैर हक, वो गए ज़मीन में और बग़ैर हक को तस्लीम किए, बग़ैर हक को माने हुए, वही बगावत में इन्हें सरकशी में मुबतला हो गए। वही सरकशी यानि ना अल्लाह की बंदगी है, ना अल्लाह की नेमतों का शुक्रगुजारी है, ना अल्लाह की नेमतों की कबूलियत है। क्योंकि इंसान बागी और सरकश कब होता है, जब अपने आप को ख़ुद मुख्तार समझना शुरू हो जाता है, जब अपने आप के लिए अथॉरिटी का कायल होता है, तभी बागी होता है ना। वरना अब्द अपने आप को जो इंसान बंदा समझेगा वो बागी कैसे होगा, उसके लिए बागी होना पॉसिबल नहीं है। तो या अय्युहन्नास, ए इंसानो, इन्नमा बग्युकुम अला अन्फुसिकुम, बेशक तुम्हारी जितनी बगावत है, जितनी सरकशी, अला अन्फुसिकुम, वो सब की सब तुम्हारे अपने नफ्स पर है। और ये भी कुरान करीम का एक उसूल है कि इन्हें अगर ये सब बातें हम समझ लेना तो ये दुनिया की ज़िंदगी हमारे लिए बहुत ईजी और सहल हो जाए। जो भी इंसान अच्छाई क्रिएट करता है या गंदगी क्रिएट करता है, सब का सब आला अनफुसेहम है, नथिंग यानी। और इसकी आयतुल्ला जवादी आमली ने मिसाल दी है, मैंने अभी आपको सुनाई थी, कि उन्होंने कहा नेक इंसान जो अच्छाई क्रिएट कर रहा होता है वो बाग है, और बुरा इंसान जो बुराई जनरेट करता है वो कूड़े का ढेर है। जो दूसरों तक आती है चीज़, यानी कि एक अच्छे इंसान की अच्छाई, वो उस बाग की खुशबू है जो दूसरे सूंघ रहे होते हैं, लेकिन असल बाग की लज्जत उस इंसान के पास ही है। कि बाग में जितने फूल हैं, जितने फल हैं, जितना सब्जा है, जितनी खूबसूरती है, वो उसे पता है कि क्या है। दूसरे लोगों तक क्या पहुंचती है, खुशबू। और इसी तरीके से जो उस कूड़े के ढेर के अंदर जितनी गंदगी और गलाजत में जो कुछ पल रहा है, वो उस शख्स का अपना माल है, दूसरे शख्स तक क्या पहुंचती है, उसकी बदबू। कि अगर आप कूड़े के ढेर के करीब से गुजरे हैं तो कूड़े का ढेर नहीं आ जाता इंसान के ऊपर, बल्कि बदबू आती है खाली। तो तुम्हारी बगावत किसके ऊपर है, अला अनफुसिकुम, मताअल हयात दुनिया। तुम बेवकूफ समझते हो कि तुमने जो मुझसे बगावत करके या हक के उसूलों को पामाल करके जो ये चीजें जमा कर ली हैं, ये तुम्हारा सामान है, ये हयात दुनिया का मता है, थोड़ा सा सरमाया है। तुम इलैना मरजिउकुम, फिर तुम पलटोगे हमारे तरफ, फनुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, और फिर हम तुम्हें खबर दे देंगे हर उस चीज़ की जो तुम अमल करते थे। अब यहाँ पर अल्लाह ने हयात दुनिया को समझाया है कि है क्या। और अब आप हयात दुनिया से क्या लेंगे, अब आप मुझे बताएं, हयात दुनिया के लफ्ज़ हम जब इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, अवर इंटरेक्शन विद द मटीरियल वर्ल्ड। ठीक है, क्लियर है नहीं ये बात। तो ये हयात दुनिया क्या है, इन्नमा मसलुल हयात दुनिया, हयात दुनिया की मसल क्या है, कमा इन, गोया के पानी है, अनज़लनाहु मिनस समाए, जिसे हमने नाजिल किया बुलंदी से या आसमान से। समा के लफ्जी माने बुलंदी के, जिसे हमने नाजिल किया बुलंदी से। फख्तलता बिही नबातुल अर्ज़ मिम्मा याकुलुन नास वल अनआम, इस पानी के साथ वो सब कुछ मिल गया जो ज़मीन से उगता है, जिसको इंसान और चौपाए खाते हैं, यानी बीज या जो भी फॉडर है, ये सब चीज़ें, पानी उससे मिला। हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़रुफ़हा, यहाँ तक कि फिर ज़मीन ने उसको ग्रो कराया, वो सब्ज़ा बन गया, वो दरख़्त बन गया, फसल बन गई। وَزَيَّنَتْ کہ وہ جو ہے پھر وہ کھیتی لہلہانے لگی، زمین زینت والی ہو گئی، خوبصورت بن گئی. وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا اور جن لوگوں کے پاس یہ سب کچھ تھا وہ یہ گمان کرنے لگے کہ وہ اس سرمائے پر قدرت رکھتے ہیں، یعنی یہ جو زمین نے اس کو اگایا ہے، یہ جو سبزہ ہے، پھل ہیں، درخت ہیں، اس پر وہ قدرت رکھتے ہیں. اتاہ امرنا لیلن او نہارن، ہمارا امر آیا چاہے رات میں یا دن میں. فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس اور وہ کیا ہو گیا، وہ ایک کٹے ہوئے کھیتی کا یا فصل کا یا بھوسے کے ڈھیر کی طرح ہو گیا کہ اس میں سے وہ کوئی بھی چیز، ان کا سرمایہ نہیں تھی، کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اس طریقے سے ہم آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں، جو تفکر کرنے والی قوم ہے، جو سوچنے سمجھنے والی قوم ہے، ان کے لیے اس طریقے سے ہم اپنی نشانیوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. تو یعنی خدا کی نشانیاں کہاں پر لکھی ہوئی ہیں؟ ایک سوال بتائیں، کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں خدا کی نشانیاں؟ کتابوں میں نہیں، نیچرل ورلڈ میں. اور جو صاحبان تفکر ہیں وہ کتابوں کو پڑھنے والوں کو نہیں کہا گیا ہے، بلکہ صاحبان تفکر وہ ہیں کہ جو خدا کی عالم قدرت میں لکھی ہوئی نشانیوں کو پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ خدا نے جو نظام بنایا ہے پورا کا پورا، یہ نظام پورا آیت ہے. وفی الارض آیات للموقنین، اس زمین میں آیتیں ہیں صاحبان یقین کے لیے. ٹھیک ہے، تو کتاب رہنمائی کرتی ہے اور کر سکتی ہے، لیکن حقیقتاً خدا نے کہاں لکھا ہے؟ خدا نے اس آسمان اور زمین اور اس زندگی میں اپنی نشانیوں کو لکھا ہے. اور جو قوم متفکر ہے وہ کون ہے؟ وہ خدا کے قلم سے لکھی ہوئی ان نشانیوں کو پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ایون اگر آپ نیکی والی زندگی بھی گزارتے ہیں اس دنیا میں تو بھی اس کا انجام کیا ہے؟ یعنی اس کا انجام ہر حال میں کیا ہے؟ کہ ایک فصل اگتی ہے، ہری بھری ہوتی ہے، پھل دیتی ہے. اس کے بعد سورہ حدید کی آیتوں میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ایسی چیز کو، کہ پھر وہ زرد ہونا شروع ہوتی ہے، زرد ہونے کے بعد وہ چور چور ہو جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اور وہ لوگ جو پہلے سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے قبضے میں ہے، ہمارے قبضے قدرت میں ہے، ہم اس کے مالک ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، وہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے ہاتھ. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ حالت ہے حیات دنیا کی، یہ دنیا کی زندگی کا سرمایہ ہے، یہ دنیا کی زندگی کی نوعیت ہے. تو اس کو ہمیں اچھے طریقے سے، اور اس کے بعد واللہ یدعو الی دار السلام، خدا نے تمہیں دنیا کی دعوت نہیں دی ہے، خدا نے تم کو دعوت دی ہے دار سلام کی، سلامتی والے گھر کی، جو کس کے لیے ہیں؟ مومنین کے لیے ہیں کہ جو آخرت میں موجود ہے. خدا نے تمہیں ادھر کے لیے بلایا ہے، تو یہ تم کہاں پڑے گا؟ یدعو الی دار السلام و یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جس کی اللہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دیتا ہے. تو بات کلیئر ہو رہی ہے کہ یہ دنیا اور حیات دنیا اور یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یعنی کہ اس میں یوں کہہ لیں کہ یہ پیراڈاکسیکل ہے، بہت زیادہ پیراڈاکسیکل ہے. یعنی ایک ہی چیز ہے، اگر آپ کو اس کو ایک طرف سے دیکھتے ہیں ڈیزائریبل ہے، دوسری طرف سے دیکھتے ہیں انتہائی انڈیزائریبل ہے. یعنی اگر ہم نے دنیا کو دنیا کے لیے چاہا یا دنیا کو اپنے لیے چاہا، یہ تباہی کا نسخہ ہے. اگر ہم نے دنیا کو تعلیم و تربیت کا مقام سمجھ کر اس میں شاگرد کے طریقے سے، شاگرد خدا کی اور شاگرد مکتب انبیاء کے طور سے زندگی گزاری، موسٹ ڈیزائریبل ہے، اسی لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں. کہ انبیاء علیہ السلام نے جو مدرسہ اور مکتب قائم کیا ہے, ہم یہ کس لیے ہیں کہ ہم اس مکتب اور مدرسے میں داخلہ لیں, اس کے اسٹوڈنٹ بنیں, اور جو اسٹوڈنٹشپ اور اسکالرشپ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کریں, اپنا ریوارڈ لیں, اپنے اچھے گریڈز لیں اور جائیں اپنے گھر. اگر میرے لیے دنیا کی زندگی کا یہ پرپز ہے, بہت اچھی بات ہے, یہ بنائی اس لیے گئی, یہ بنائی ہی اکیڈمی کے طور پہ گئی ہے, اس کو ریزیڈینشل پلیس کے طور پر بنایا ہی نہیں گیا. وہ تمام کے تمام لوگ انتہائی احمق ہیں جو اس کو رہنے کا گھر سمجھ کے یہاں پر اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پیراڈاکسیکل ہے. اور اس بات کو خدا نے سمجھا دیا کہ تم یہاں کوئی بھی ہو, تم عمرے نو لے کے آ جاؤ, لیکن اس دنیا کی زندگی کی نوعیت ایسی ہے کہ یہ ایک کوپل کی طرح اٹھے گی, اپنی پیک پہ پہنچے گی, ہری بھری ہوگی, پھر نیچے جانا شروع ہوگی اور ختم ہو جائے گی. یعنی اس میں کسی کے لیے اس جگہ پر کوئی سروائیول نہیں ہے. تو تین باتیں ہو گئیں, ٹھیک ہے, تین باتیں سمجھ میں آ گئی نا, کہ اس زندگی کی جو اپنی کنفیگریشن ہے وہ یہ کہ اس کا ایک پورا یہ گراف ہے کہ آپ ایسے شروع ہوتے ہیں, اوپر جاتے ہیں, اوپر جاتے ہیں, اپنی طاقت تک پہنچتے ہیں, پھر واپس آنا شروع ہوتے ہیں یہاں تک کہ ختم. اینڈ دیٹ ہیز ٹو ہیپن ود ایوری ون. یہ دنیا کی زندگی کی مثال خدا نے بتا دی. اب یہ کہ وہ لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں ان میں سے ایک قسم کے افراد وہ ہیں کہ جو, جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دنیا کی اصل حقیقت کو سمجھ کر اس میں زندگی گزارتے ہیں, اور مکتب الہی اور انبیاء علیہ السلام کے شاگردان ہیں, وہ اس دنیا کو خالی تجارت گاہ سمجھتے ہیں, مسجد سمجھتے ہیں, اکیڈمی سمجھتے ہیں, یہاں پر مسلسل اپنی تعلیم اور تربیت میں مشغول رہتے ہیں, اپنے آپ کو ایلیویٹ کرتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد جب وقت آتا ہے تو یہاں سے رخصت ہو کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. لیکن ایک قسم کے افراد, بلکہ زیادہ تر افراد اس زندگی میں وہ ہیں کہ جو اس حماقت کا شکار ہو گئے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے, مال دنیا میرا سرمایہ ہے, اس کو اپنی ریزیڈنس بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں, دنیا کا مال جمع کرتے رہتے ہیں اپنا مال سمجھ کے, اور حسرت اور افسوس اور یاس کے عالم میں پھر یہاں سے, کیونکہ اس وقت کے جب نکلنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو میرا اپنی پاکٹ میں جب نظر ڈالتے ہیں تو اپنی پاکٹ خالی ہے. ٹھیک ہے, اور میں اپنی جیب میں کیا بھر رہا تھا, اپنا سامان نہیں بھر رہا تھا, دنیا کا سامان بھر رہا تھا. تو خدا کے نظام میں کوئی غصب تو نہیں کر سکتا نا, تو وہ جاتے ہوئے دنیا نے سب واپس لے لیا. اور عذرائے مہربانی کیا ہے, یہ دنیا کی مہربانی ہمارے ساتھ کیا ہے کہ جاتے ہوئے آپ کو ہمیں ایک 6 فٹ کی جگہ دے دی, دیٹ از دا ریسٹنگ پلیس, ختم بات. اور اس بارے میں جو امام علی علیہ السلام نے فرمایا, اور اس شخص کو یہی ڈانٹا تھا کہ دنیا نے تم سے کب جھوٹ بولا ہے جو تم اس کو برا کہہ رہے ہو, دنیا نے تم سے کب دھوکہ کیا, کہ دنیا نے نہیں دکھایا کہ میرا یہ کریکٹر ہے, میں لوگوں کے ساتھ یہ کرتی ہوں, میرا یہ سلوک ہے جو بھی میرے اندر موجود ہیں. تو یہ تمہارا دماغ خراب ہے نا کہ تم یہ ساری امیدیں لگا کے بیٹھے ہو, یہ دنیا نے تم سے کہا کہ تم یہ کرو. اس نے تو اپنے آپ کو بالکل اوپن کر کے بتا دیا, لمن فہم عنہا, کہ جو اس سے فہم حاصل کرے. تو یہ تین باتیں واضح ہو گئیں انشاءاللہ دنیا کی زندگی کے حوالے سے. کہ تو اس میں, یعنی کہ یہاں پر وہی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, چیزیں بالکل واضح طور سے بیان کر دی گئی ہیں. اور ہم جو ہے نا وہ بنیادی طور سے جس جگہ پہ پھنستے ہیں, جو میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا نا کہ ہمارے لیے ریکرنگ ٹاپک ہے جو ہر دفعہ لوٹ پھر کے گھوم کے آ جاتا ہے واپس, اور وہ اسی وجہ سے گھوم کے واپس آتا ہے کہ ہم نے جو اپنے دل کے آنکڑے ادھر ادھر پھنسائے ہوئے نا دنیا میں, ہم اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. اور جب کہ یہ بات بالکل واضح ہے, آپ مجھے یہ بات بتائیں, بس یہ آخری جملہ میرا, کہ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ ایک انسان اس دنیا میں اپنا مال, اپنی اولاد, اپنی ہر چیز, اپنی محبوب ترین چیز छोड़ के जाने पर मजबूर होता है या नहीं होता? इसमें कोई दो बात दो राय हैं, यानी इससे इस बात से कोई फर्क पड़ेगा कि मैं अपनी औलाद से बे इंतहा मोहब्बत करता था जुनूनियों की हद तक, ये दुनिया छोड़ देगी, ये दुनिया कह लें या निज़ाम खुदा कह लें छोड़ देगा कि क्योंकि आप अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते थे लिहाजा आप क़यामत तक अपनी औलाद के साथ रहिए? पॉसिबल है ये? तो ऐसी हर एक चीज़ के साथ है। तो हम इस तमाम ऑब्जर्वेशन के बावजूद अहमक क्यों बने रहते हैं? असल जो क्वेश्चन मार्क है ना वो यहां पर है। और फिर उसकी वजह से जब आखिर में तकलीफ होती है, क्योंकि वो जो एक रिवायत है कि लोगों की जब मौत आती है तो मौत में बदन से रूह जुदा होने की कैफियत ऐसे होती है जैसे आप एक कांटेदार झाड़ी पर एक चादर डाल दें और फिर उसको खींचें, तो जिस तरीके से फट फट के निकलती है उसमें से फंस फंस के, तो इस तरीके से रूह बाहर आती है। ये इसका कोई खुदा ने ऐसी कोई चीज़ नहीं रखी हुई है, इसका मतलब क्या है? ये सारे कांटों से हमने अपनी रूह को फंसाया हुआ है। ठीक है, ये जितने भी सारे निकले हुए ये कांटे हैं इसमें हमने फंस, अब कागज निकलो यहां से, निकलने का टाइम आ गया, तो अब ये मुसीबत, अब कैसे निकलें? अब ये अब वही उसी को वो मिसाल दी गई है कि अब वो चादर जो उसमें फंसी हुई है कांटेदार झाड़ियों पर, अब उसको अब खींच रहे हैं, तो वो जिस तरीके से वो निकलेगी ऐसे उस इंसान की रूह निकलती है, उस इंसान का नफ्स जिस्म से बाहर आता है। लेकिन जो मोमिन हकीकी है उसकी उसके लिए इंतकाल का वक्त क्या होता है? वो भी रिवायतों में मौजूद है कि मलकुल मौत बहिश्त की खुशबू लेकर आते हैं। इन्हें मुख्तलिफ वो हैं कि किसी में है कि जब मोमिन उस तकलीफ को महसूस करता है तो कहते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी में तुमने जिन हस्तियों को सबसे ज़्यादा महबूब रखा था देखो वो तुम्हारे सामने, यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम, कि तुमने अपनी ज़िंदगी में, लेकिन हमने महबूब रखा हो तो बात है ना, ज़बानी कलामी बातों से थोड़ी होता है, महबूब रखा हो तो फिर बात है। तो मलकुल मौत कहते हैं कि तुम इन चीज़ों पे क्यों परेशान हो रहे हो, देखो जिन हस्तियों को तुमने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महबूब रखा था वो तुम्हारे तुमको लेने हैं, तुम्हारी मुलाकात के लिए हैं, तुम उनके पास जाना चाहोगे? मोमिन कहता है बिल्कुल जाना चाहूँगा। और जैसे ही अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़ियारत उसको नसीब होती है आराम से उसकी रूह उसका जिस्म छोड़ देती
है।
इख्तियारी वाली बात तो बहुत आगे की है, वो तो बहुत आगे की है ना, कि इसका मतलब ये है कि एक इंसान इस ज़िंदगी में इस जिस्म में रहते हुए इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन की हकीकत को पाले, तो उसके लिए फिर ये चीज़ यानी कि यहाँ कोई चीज़ उसको रोकने वाली रहती ही नहीं है, यानी उसका नफ्स इस मियार पे आ जाए कि दुनिया की कोई चीज़ उसकी अटैचमेंट को अपनी तरफ खींची ना सके, उसकी तवज्जोहात को, और उसकी सारी की सारी तवज्जोहात उधर हो। तो ऐसा नहीं है कि खुदा ने इस जिस्म को मेरे लिए एक इक्विपमेंट के तौर पे दिया है, कैद खाना नहीं बनाया है, जुमला ज़हन में रखिएगा, इस जिस्म को अपने लिए कैद खाना हमने खुद बनाया है अपने हाथों से। तो जो औलियाए खुदा होते हैं जो वाकयन इस मियार पे होते हैं, तो क्योंकि उनकी तमाम तवज्जोहात उधर हैं तो इस वजह से उनका नफ्स और उनका रूह, जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम के जुमले नहजुल बलागा में कि जो इस हालत में सुबह करते हैं कि अरवाहुना मुअल्लकतन बिल महल लाला, कि उन बदनों के साथ सुबह करते हैं कि जिनकी रूहें महल आला में मुअल्लक होती हैं। तो अगर इंसान ऐसा हो जाए, क्योंकि खुदा ने इस जिस्म को कैदखाना नहीं बनाया, बिल्कुल नहीं बनाया, ये जिस्म मेरा टूल बॉक्स है, ये जिस्म मेरे लिए इक्विपमेंट के तौर पर है, कि जिसकी यानी कि जिससे मैं ये वो सारे काम करूं कि जो मेरे लिए आखिरत और जन्नत का सरमाया फराम कर सके। लेकिन हमने क्या किया है कि सवारी को अपने ऊपर सवार कर लिया है। अब हम सवारी पे सवार नहीं है, सवारी मेरे ऊपर सवार है। ये प्रॉब्लम है। जी कोई बात अगर आप लोग